रावण तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी होगी, उसकी छाती पर बहुत से गीध टूट पड़ेंगे और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिएंगे। आज निपत्यो रसी ग्रंथास्ते छितोच्छित्तस्य रावण पिबन्तु रुधिरं तरसां बाण शल्या तरोत्थितम्। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचेंगे। आज जैसे गरुड़ जी सर्पों को खींचते हैं, ऐसे पक्षी तेरी आंतों को खींचेंगे। आज अद्य मद भाण भिन्न कृतासोपतितस्यते कर्षन तंत्राणि पतगम गरुत्मन्ते एवो रगम। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय राम का बल पराक्रम उत्साह है और अस्त्र बल बढ़कर दुगना हो गया और रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के साथ महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। तो अब रावण का हृदय व्याकुल हो गया। बाणों ने बहुत से पत्थर भी चलाए और रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से अब रावण बहुत घायल हो गया, हृदय व्याकुल हो गया। अब उसमें शस्त्र उठाने की, धनुष खींचने की और पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई। उसका मृत्युकाल समीप आ गया। उसकी ऐसी अवस्था देख करके उसका सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा करके ले गया। तो रास्ते में ही रावण को जब होश आया तो फिर सारथी को बहुत डांटने लगा। क्यों? क्योंकि उसको मरना था, रावण को मरना था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों यहां ले आया, तुम क्यों भगा के ले आया। तो कैसे बोलता है, दुर्बुद्धे क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य समझा है, असमर्थ समझा है, मुझे डरपोक समझा है, निस्तेज समझा है, जो मेरी अवहेलना करके तो अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। देखा, सारथी तो सहायता कर रहा था बेचारा, लेकिन उसको मरना था इसलिए सारथी को उल्टा बोल रहा है। तो फिर सारथी ने कहा, महाराज मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है, मैं असावधान भी नहीं हूं, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है और आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं, आपकी अस्थि रक्षा के लिए यत्नशील रहता हूं, मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है, इस कार्य से आपका हित होगा ये सोचकर ही मैंने ऐसा किया है, भले ही आपको अप्रिय लगा हो। फिर रावण की आज्ञा से सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हांके और राक्षस रात का विशाल रथ क्षण भर में श्री रामचंद्र जी के समीप आ गया। अब भगवान राम जो है रावण के उस रथ को देखते हैं कि वो आया है। रावण का रथ कैसा है, काले रंग के घोड़े जुते हुए रावण के रथ में और बड़ी भयंकर कांति है उस रथ की। और रावण का जो धनुष था उसके द्वारा वो रथ इंद्र धनुष की छटा छिटकाता था। उसकी आवाज कैसी थी, रथ की आवाज वज्र की आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा है रावण के रथ का। तो रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी और अपने सारथी मातली से कहा, राम ने, राम क्या कहते हैं, मातली देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, रावण जिस प्रकार महान वेग के साथ पुनः आ रहा है इससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। जब ये मरने अब बिल्कुल निश्चय कर लिया कि मरना ही है मुझे, इसलिए आ रहा है, अतः आप तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। भय और घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हांकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। भगवान राम कह रहे हैं कितना शिष्टाचार है, सारथियों को कह रहे हैं मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, तुम तो पहले से जानते हो, मैं तुम्हें केवल स्मरण करा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता है। रामचंद्र जी के इस वचन से मातली को बड़ा संतोष हुआ। अब देखो रावण अपने सारथी से कितनी गलत तरीके से बात कर रहा है और राम अपने सारथी से कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और मातली ने रावण के विशाल रथ के दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया और उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वो अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। अब अपशकुन हो रहे हैं, कैसे अपशकुन हो रहे हैं, मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। देखा रावण के रथ के ऊपर मेघ खून की वर्षा कर रहे हैं, रथ के ऊपर ही वर्षा कर रहे हैं। बड़े देर से उठे हुए बमंडर उसकी वामवर्त परिक्रमा करने लगे। बमंडर जो है ना वामवर्त परिक्रमा कर रहा है उसकी, तो ये भी अपशकुन है, बुरा है। दक्षिणावर्त नहीं, वामावर्त, जैसे प्रदक्षिणा करते हैं ना आप, तो जैसे करते हैं तो उल्टी प्रदक्षिणा, तो जो बवंडर है उसके रथ की उल्टी प्रदक्षिणा कर रहा है। और जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। रावण का रथ जहाँ जा रहा है जिस रास्ते में बहुत गीध जहाँ दौड़े जा रहे हैं, है ना, भोजन के लिए। महान गृध्रय कुलम चाशम भ्रमाणम नमस्थले ये न रथो याति तेने तेने प्रधावती। और क्या है कि अड़हल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई जैसी दिखाई दे रही है। ये भी अपशकुन है उसका। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उससे राक्षस लोग बहुत भयभीत हो गए और रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी, हिलती थी, मतलब भूकंप आ रहा है। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं निकम्मी हो गई मानो किसी ने पकड़ लिया हो, तो ये भी मृत्यु का लक्षण है। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। ये अपशकुन है। और रावण के रोसा वेश से पूर्ण मुख्य ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीद मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। रावण जहां जाता है धूल उसकी आंखों में पड़ रही है, रावण की आंखों में, और उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिर रही हैं। तो बिना बादल की बिजली गिरे और राक्षसों की सेना में बिजली गिर रही, बिना बादल की बिजली गिर रही है। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से अच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं। ये सब अपशकुन है। और रावण के घोड़े, उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे हैं, रावण के घोड़े। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते हैं। घोड़ों की जंघाओं से आग निकल रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं रावण के। इस तरह बहुत से दारुण और भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। जेतव्यम इति काकुत्सो मर्तव्यम इति रावणः ततो सुवीर्य सर्वस्वं युद्धे दर्शयताम तदा। उस समय पराक्रमी रावण ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ की शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े, ध्वजा नहीं गिरा पाए। तब महाबली रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने के लिए उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। तथा रामोपि संक्रोधन चाप मा कृष्य वीर्यवान कृते प्रति कृतम कर्तुम मनसा संप्रचक्रमे। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य है और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। रावण ध्वज मुंदिस्य मुमोच निजतम सरम महासर्पम निवासह्यम ज्वलंतम स्वेन तेजसा। अब क्या हुआ, श्री राम ने उस ध्वज को निशाना साध कर अपना बाण चलाया और रावण के ध्वज को काट करके वो बाण पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती में गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देखकर महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण वह बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने बाणों से रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इंद्र के जो घोड़े दिव्य थे, इसलिए ना तो लड़खड़ाए और ना अपने स्थान से विचलित हुए, वे पहले के समान स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। रावण के जो बाण है, कमल की नाल से प्रहार करो तो क्या कुछ नहीं होगा। उन घोड़ों को घबराहट में ना पड़ता देखकर रावण का क्रोध और भी बढ़ गया कि मैं तो घोड़ों को बाण मार रहा हूँ, घोड़े घबराए नहीं रहे हैं, खड़े हैं जो कि तुम। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। अब गदा चलाई, चक्र चलाया, परिघ मूसल पर्वत यानी पर्वत शिखर, वृक्ष सूल फरसे और माया के बने हुए बहुत से शत्रुओं की वर्षा की। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से बानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने बाणों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। कितना बाण मारा। तब रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों और हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। इतने बाण मारे। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश जैसा प्रतीत होता था। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया मानो उसमें सांस लेने की जगह भी नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। उन दोनों के श्रेष्ठ रथ समर भूमि में अत्यंत क्रोध पूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषय प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों गति वेग का आश्रय लेते थे। अब भगवान राम कुपित होकर के अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान करते हैं और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का सुंदर मस्तक कट करके गिरा। उसका कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिरा जैसे तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। बहुत लोग देख रहे थे, है ना, रावण का सिर कट करके गिरा। तथा क्रोधान महाबाहु रघुणाम कीर्ति वर्धन संधाय धनुषा रामहम सर्मासी विशोपमम रावण से शिरोच्छिंदन श्रीमंजुलित कुंडलम तच्छिरा पतितं भूमौ दृष्टं लोके त्रिभिस्तदम। लेकिन हुआ क्या, सर तो जमीन में गिर पड़ा लेकिन उसकी जगह पर रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। देखा आश्चर्य। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले श्री राम ने रावण को वो दूसरा सिर भी जल्दी से काट दिया, तुरंत काट दिया। उसे कटते पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा किंतु राम ने वज्र के समान बाणों से फिर उसे काट दिया। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले राम ने। फिर भी उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था, अंत ही नहीं आ रहा उसके सिरों का। तब कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे भगवान राम। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है वे ही मेरे सब बाण आज रावण के ऊपर कुंठित हो गए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। वैसे कुंठित तो नहीं हुए, सिर तो कट रहे हैं लेकिन सिर नए सिर आ रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का असफलता है। इस प्रकार चिंता में पड़े होने पर भी रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। अब छाती पर मारना शुरू किया। तब रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि से राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। अब बहुत भयानक युद्ध हुआ और ना तो रात में बंद होता है ना दिन में बंद होता है। 2 घड़े के लिए, 1 क्षण के लिए भी युद्ध बंद नहीं हो रहा है, दिन रात लगातार चल रहा है। अब ये युद्ध जो है ना समाप्त नहीं हो रहा है। तो देवराज के सारथी मातली ने श्री राम से अब जल्दी कहा, क्या कहा, वीरवर आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए, देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वो अब आ गया है, ब्रह्मास्त्र चलाइए। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। ये वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था, ब्रह्मास्त्र। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की प्रतिष्ठा थी, धार में अग्नि की प्रतिष्ठा थी और शरीर में सूर्य की प्रतिष्ठा थी। शरीर में आकाश की, अच्छा, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की और भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा थी। मेरु पर्वत मंदराचल पर्वत जैसा भारी वो बाण था। बड़े बड़े दरवाजों और पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने वाला था वो बाण। उसका सारा सारा शरीर रक्त से नहाया था उस बाण, वो बाण जो है देखने में बड़ा भयंकर था, वज्र के समान कठोर था, सबको त्रास देने वाला था, युद्ध में यमराज का भयानक रूप धारण कर लेता था। वो जो बाण था गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। उस बाण का बड़ा वर्णन है। और राम ने उस बाण को धनुष पर रखा, जब धनुष पर रखा तो संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी जब राम ने वो बाण रखा। श्री राम ने अत्यंत कुपित होकर बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। रावणाय संक्रोधो वृषमायम मे कार्मुकम शिक्षेपे परमाय तहासरम मर्मे विदारणम। अब क्या हुआ, वो बाण वज्र के समान दुर्धर्ष रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली बाण ने छूटते ही रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। सिरों का तो अंत ही नहीं हो रहा था, सिर काटते रहते तो हृदय में ब्रह्मास्त्र मारा उसके। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। रुधिराग्ता सवेगेन शरीरां तय कर रावण से हरण प्राणान विवेश धरणी तलम। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। कैसा आश्चर्य है, खून से रंगा हुआ वो बाण राम के तरकस में विनीत सेवक की भांति आ गया। तसरो रावणम हत्वा रुधिरार्द्र कृत छवि कृत कर्मा निभृत वन सतोणीम पुनराविशन। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से धनुष बाण भी छूटकर गिर पड़ा। वो भयानक वेगशाली राक्षस प्राणहीन होकर वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतसे निशाचर हतनाथा भयत्रस्तां सर्वतः संप्रतुद्रुवुः। रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अब बानरों ने मारना शुरू किया राक्षसों को, रावण की मृत्यु हो गई। तो उन हर्षोल्लासित बानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणायुक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय बानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। तब श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे सब बानर लोग जो हैं। ततो विनेदो संग्रिष्टा वानराज तकाशिनः वदन्तो राघव जयम रावणस्य चतन्वधम। इस समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजी, वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अथांतरिक्षे विनदन सौम्य त्रिदशन दुन्दुभि दिव्य गंध वह तत्र मारुता सुसुखो भवम। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश में देवताओं के मुख से निकली हुई रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। देवता लोग क्या कहते हैं, साधु साधु इस प्रकार से बोलते हैं। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। आविवेश महान हर्षुम देवानां चारणे सह रावणे निहते रौद्रेम सर्वलोके भयंकरेम। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी, सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। तथा प्रजंगमो प्रशमम मरुणगणाम दिशा प्रसे दुर्विमलम नभो भवन बहिच कंपे न च मारुतो भवाम स्थिर प्रभा चाप्य भवन दिवाकरहाम। सुग्रीव, विभीषण, अंगद और लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नैनाभिराम से राम की विधिवत पूजा की। तदस्तु सुग्रीव विभीषणांगदाम सुहृन विशिष्टा स लक्ष्मण सदाम समेत हृष्टा विजयेन राघवम रणेभिरामम विधिना विपूजयन। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात सजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र के भांति शोभा पाने लगे। सतु निहत रिपो स्थिर प्रतिज्ञा सतन बला विवृतो रणे बभोव रकुल इंद्र नंदनो महोजास तिदस गणे रवि संवृतो महेन्द्र। रावण की स्त्रियों का विलाप सुनिए। रावण की स्त्रियां, रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। रावण की स्त्रियां, उनके केस खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गऊओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकली और भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके अपने मरे हुए पति को खोजने लगी स्त्रियां और क्या बोलती हैं, हा आर्य पुत्र, हा नाथ, इस प्रकार की पुकार मचाती हुई वे सबके सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं और रक्त की कीच जम गई थी, सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो युद्ध पति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृत पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़े। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं और ऊपर उठाकर पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी और कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुख निहारती और अश्रु बिंदुओं से पति के मुख को नहलाती हुई रोदन करने लगी। इस प्रकार अपने पति रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब के सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। अब क्या बोली, हाय, जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत करके रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था, गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय, जो असुरों, देवताओं और नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हें को आज मनुष्य से ये भय प्राप्त हुआ है। ये है ना बड़ा विरोधाभास, मनुष्य के द्वारा भय प्राप्त हुआ है। तो भगवान तो पूर्ण मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, है ना। जैसे कि माता जी उनको याद दिला रहा है, नहीं तो उनको याद नहीं आ रहा है राम को, है ना। तो पूर्ण मनुष्य जैसी भगवान लीला कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथ से जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। कितना आश्चर्य। अवध्यो देवतानां यस् तथा दानव रक्षसाम् हताशोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिनाम्। हाँ, भगवान राम तो पैदल ही चलने वाले थे, है ना, 14 साल तक तो वो पैदल ही चलेंगे। जो देवताओं असुरों और यक्षों के लिए भी अवध थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। यो न सक्या सुरैर्हन्तुम् न यक्षैर्न सुरैः तथाहम् सोऽयं कश्चिन् यवा सत्त्वं मृत्युं मर्त्येन लम्बितः। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। एवं वदन्त्यो रुदुस तस्यता दुखिता स्त्रियां भूय एव जो दुखार्ता विलेपुश्चा पुनः पुनः। वे बोली, प्राणनाथ, आप में सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल ये हुआ कि राक्षस मार गिराए गए और आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। तुमने अपने को रणभूमि में गिराया और हमको दुख के समुद्र में गिराया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें कटु वचन सुनाए, उसी का ये फल मिला है। प्रवाणोपि हितम वाक्यम इष्टो भ्राता विभीषण दृष्टम परुषितो मोहात्म वध कांक्षिणाम।
तो इस प्रकार से हमने उस घटना का श्रवण किया जिसमें श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और ये घटना आज के ही दिन घटित हुई थी। अब कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि भगवान राम का बाण अमोघ होता है, परंतु यहाँ हमने सुना है कि रावण के ऊपर राम के बहुत से बाण व्यर्थ हो गए, तो कैसे हुआ? हाँ, ये बात सत्य है कि राम के बाण अमोघ होते हैं, परंतु जब राम का रावण के साथ युद्ध होता है तो ये युद्ध बराबरी का है। जब भगवान को युद्ध करने की इच्छा होती है तो वे मक्खी मच्छरों से युद्ध थोड़े ही करेंगे। युद्ध का आनंद तो तभी आता है जब कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, नहीं तो युद्ध का आनंद कहाँ होता। यदि भगवान राम रावण को एक ही बाण से मार देते, तीनों लोगों के दर्शक इस महान युद्ध को देख रहे थे। फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि हीरो पहले खलनायक से हारता है परंतु बाद में तो उसे जीतना ही है। धन्यवाद। श्री रामचंद्र विजय महामहोत्सव के।